नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी हैं। गीता दीदी ओम शांति। गीता दीदी, जैसे आप हमें सभी प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे से देते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है, हमारा कार्यक्रम भी, और उनको आंसर जब मिलते हैं तो उसको फॉलो भी करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रश्न आया है जो कि रीता बहन का है। वो बोल रहे हैं, मैं एमपी से हूँ, मेरे पति बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं बट वो गैर जिम्मेदार हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से जिम्मेदारियों को समझते नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स ने शादी की थी कि वो बहुत अच्छे फैमिली से हैं, बहुत अच्छी फैमिली है तो आप सुखी रहोगे, पर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूं, मैं उनको कैसे उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाऊं, उनको कैसे डिसीजन देने के लिए बोलूं कि आप डिसीजन मेकिंग में कैसे उनकी हेल्प करूं।
किसका प्रश्न है ये?
ये रीता बहन है।
रीता बहन, आपका प्रश्न सुना। देखो, जीवन में सब चीजें एक साथ नहीं मिलती है। आपका पति बहुत पढ़ा लिखा है और वेल टू डू परिवार का है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आपका सौभाग्य है। आज इंसान को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कई इतना पढ़े भी नहीं होते हैं जो उनको ऐसी नौकरी का, कई जॉब का चांस मिले। चलो, आपका पति बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से है, तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु चलो, एक कमजोरी है कि वो जिम्मेवारी का जो उनके अंदर होना चाहिए सेंस, वो इतना नहीं है। तो ये तो हम उसमें वो चीज ला सकते हैं। जब तक उसके अंदर वो जिम्मेवारी की सेंस डेवलप हो, तब तक देखो, आखिर पति और पत्नी एक दो के पूरक होते हैं। कुछ उनके तरफ से आपको साथ सहयोग मिलेगा, कुछ आपके तरफ से मिलेगा। तो अगर उसका पढ़ा लिखा है तो वो नॉलेज जो है कई बातों में आपको उपयोगी बनेगा, और संपन्न परिवार का है तो आर्थिक रूप से और कोई चिंता की बात आपके लिए नहीं है। तो वो जिम्मेवारी इतनी नहीं उठाते हैं, तो वो आप सहयोग कर दो कि कुछ काम आप जिम्मेवारी से घर के संभाल लो। इस बात को लेकर के आप ज्यादा चिंतित भी ना रहो, कोई क्लैश भी नहीं करो, और उसके कारण अपना मन खराब नहीं करो। बाकी आप अगर सारे ही काम करने लगते, कई बार क्या है, हम ही खुद शुरुआत कर देते हैं कि हम ही उनके छोटे मोटे हर काम तैयार करके दे देते हैं, तो फिर उसको आदत पड़ जाती है, वो जिम्मेवारी लेते ही नहीं है। इसलिए उनके अपने जो पर्सनल लाइफ के कुछ कामकाज है वो आप उनके ऊपर धीरे धीरे छोड़ते जाइए, ताकि खुद के काम ठीक से नहीं हुए होंगे तो उनको खुद को ही तकलीफ होगी। तो उनको महसूसता होगी कि जीवन में जिम्मेवारी का गुण भी कितना जरूरी है। अगर जिम्मेवारी से हम हर कार्य करेंगे तो वो हम परफेक्ट रीति कर पाएंगे। जब जवाबदारी नहीं समझते हैं तो आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे, ध्यान देंगे ध्यान नहीं देंगे। तो उनके जो पर्सनल कामकाज है छोटे मोटे, चाहे उनके कपड़े, उनके जूते, उनके चप्पल, या उनके ऑफिस की चीजें, या उनके कमरे की चीजें, तो आप उनके ऊपर ही छोड़िए, और कि भी मैं और काम में बिजी हूँ, थोड़ा आप अपना कर लो, इस रीति से। तो धीरे धीरे उनको खुद ही महसूस होगा, जब वो चीजें ठिकाने पर नहीं होगी, ध्यान से रखी नहीं होंगी, तो वो ध्यान देने लगेंगे और जिम्मेवारी उठाने लगेंगे।
और दीदी, रही बात, एक और आती है कि उनमें आलसपन बहुत है, वो आलसी बहुत है, अपने काम को टाइम से पूरा नहीं करते हैं, तो उनका आलस कैसे दूर कर सकते हैं?
आलस के कारण ही तो जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं ना। तो थोड़ा उनके साथ मिल के कोई काम करिए, दोनों मिलके करी, एक अकेले पर छोड़ेंगे तो वो नहीं करेंगे, पर थोड़ा आप भी उसको कहो कि नहीं, मैं भी अकेली नहीं करूंगी, हम दोनों मिलके ये करते हैं। तो थोड़ा उसको एक्टिव हमें बनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से तो जरूर आप बात करती होगी, पर मैंने ये देखा है कि कई बार हम किसी की कमजोरी को बार बार टोकते रहते हैं, आप जवाबदारी से काम नहीं करते, मैंने आपको कहा था देखो आप भूल गए, आप ले नहीं आए, तो बार बार इस बात पर टोकते रहने से या कुछ न कुछ कहने से मन और ही खराब हो जाता है, आपस में संबंध ठीक नहीं रहते, मन नाराज हो जाता है कि ये हर टाइम कोई ना कोई बात के लिए शिकायत करती ही रहती है। तो बेटर ये है कि क्योंकि वो बच्चे तो नहीं है जो उनको समझाया जाए, चलो एक बार दो बार तीन बार आप समझाएंगे, और मैं समझती हूँ रिटर्न आपने ये सारे प्रयास तो करके ही देखे होंगे, पर रोकने और टोकने के बजाय उनको साथ देके करो तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो फिर अपने पांव पर हो जाएंगे और खुद जवाबदारी उठाने लगेंगे कि चलो भाई हम दोनों सब्जी लेके आते, चलो आज खरीदारी करनी है, मैं अकेली इतना नहीं कर सकूंगी, आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप उनको एक्टिव करो, और दूसरा ये देखो कि उनको रुचि किस में है, तो जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो काम उनको दो, तो जिसमें इंटरेस्ट होता है वो काम देने से व्यक्ति रुचि से करता है, और इस रीति से फिर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है का गुण जो है उसके अंदर डेवलप होता जाएगा।
दीदी जैसे वो बोल रही हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं डिसीजन नहीं लेते हैं, वो हर एक डिसीजन अपने पेरेंट्स से लेते हैं कि मैं ये काम कैसे करूं कैसे नहीं करूं, अपने आप से डिसीजन वो कभी ले ही नहीं पाते। अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो वो भी वो पेरेंट्स से कहते हैं कि मैं मार्केट जाऊं या नहीं जाऊं, तो इसके लिए मैं उनको डिसीजन मेकिंग कैसे बनाऊं, कैसे उनकी हेल्प करूं कि वो अपने डिसीजन खुद लें।
ना इससे दिख रहा है कि बचपन से लेकर शायद माँ बाप ने ज्यादा उसको डिपेंडेंट बनाया है, इसलिए आज तक भी छोटी छोटी बातें वो उनसे पूछते रहते हैं, और जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है तो नेचुरली उसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी नहीं आएगा। वरना व्यक्ति जब जिस बात का डिसीजन लेता है तो वो बंधा है उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो भोगने के लिए या उसको फेस करने के लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल है, वो समझ जाता है। पर जब डिसीजन ही नहीं लेते हैं तो फिर नेचुरली है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का भी गुण उसमें नहीं है। तो थोड़ा आप अपने सास ससुर से भी बात करिए और बताइए कि देखो ये दो चीजें हैं, छोटी छोटी बातें वो आपसे पूछते रहते हैं और खुद निर्णय नहीं करते हैं, उसके कारण वो कोई जिम्मेवारी भी नहीं उठाते हैं। इसलिए थोड़ा सास ससुर अगर आपके समझदार हैं और आपको वो समझ पाते हैं तो वो जरूर आपको हेल्प करेंगे, और वो ही कह देंगे कि भाई आप खुद ही निर्णय करो और आप अपनी पत्नी के साथ इस बात का फैसला करो, तो ये भी एक हेल्प मिल जाएगी। और दूसरा आप खुद बैठ के भी उसको कहो कि भाई छोटी छोटी बातों का निर्णय तो आपको खुद करना चाहिए, आप ये बातें उनसे पूछने जाएंगे तो ये तो बहुत डिले हो जाएगा काम करने में, कितना टाइम वेस्ट होता है कि मैं पूछता हूँ बताता हूँ, है ना। और फिर आप बताओ कि अभी ही आप निर्णय लेके मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं खुद अपना आप करती हूँ,
तो
थोड़ा और मैं कहती हूँ फिर ऐसे करना है, या तो आप डिसीजन बताइए या फिर मैं कहती हूँ ऐसे,
और अभी क्या भी बताएं
और अभी का बताओ, तो उसको आप बांधो कि ये छोटी छोटी बातें थोड़ी कोई पूछते रहना, अब आप बच्चे नहीं हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप प्रैक्टिकल भी बनिए। कई बार व्यक्ति पढ़ने में ही रह जाता है तो जीवन के और साइड का विकास नहीं होता है, वो पंडित बन जाते हैं विद्वान बन जाते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो हो सकता हो कि ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने में ही काफी उनका अटेंशन रहा होगा, तो प्रैक्टिकल बातों में वो गए नहीं होंगे, तो उनको आपको ही समझा करके कि अब हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, अब आप एक अकेले नहीं है, मैं भी आपसे जुड़ी हूँ, और कल उठ के बच्चे होंगे तो हम एक से आप दो हुए हैं और दो से चार भी होंगे तीन भी होंगे, तो अब आप अपनी जिम्मेवारी समझिए। इसलिए अभी ही आपको डिसीजन लेना है और या तो फिर मेरे डिसीजन अनुसार चलो। तो इस प्रकार से थोड़ा मोटिवेट करते रहने से जरूरी एबिलिटी उसमें आ जाएगी। क्रिटिसाइज ना करें, नहीं तो वो और कुंठित हो जाएंगे, वो जरा भी विकसित नहीं होंगे। इसलिए ये आप में नहीं है ऐसा नहीं बोले, उनको टोकते न रहे, क्रिटिसाइज न करते रहे, पर उनको मोटिवेट करे कि अब तो इतने नॉलेजेबल है, तो नॉलेजफुल व्यक्ति फिर पावरफुल भी होनी चाहिए। डिसीजन लेने के लिए नॉलेज के साथ पावर भी तो चाहिए ना। आज व्यक्ति डिसीजन कब ले पाता है, जब अपनी कोई जवाबदारियां समझता है तो वो निर्णय लेगा ना। मालिक बन के काम करेगा तो वो निर्णय लेगा। तो इसलिए निर्णय लेने के लिए क्षमता चाहिए। कई बार हम समझते हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, पर जो नहीं करना है वो नहीं ही करे, और जो करना चाहिए वो करेगी करे। वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इसलिए नहीं होती है कि उसमें पावर नहीं होता है, कि अपनी जो सही बात है उसमें वो दृढ़ रहे, वो दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मिलके साथ करेंगे, तो वो डेवलप हो जाएंगे।
तो उनको अपने हस्बैंड को ही समझाना चाहिए कि जो भी डिसीजन लेना है अभी ले, इसी टाइम ले, मेरे सामने ले। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी जो राय है वो उनको समझाएं। तभी वो फिर आगे बढ़ेंगे, तभी उनको वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं उनकी कि कैसे डिसीजन लेना है। दीदी ये रीटा जो है ये बोलती है कि मेरे हस्बैंड हर छोटी छोटी बात अपने पेरेंट्स को जाके करते हैं, अगर भगवान ना करे जब पेरेंट्स नहीं होंगे तो वो हर एक छोटी बात क्या अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और घर की सारी बात उनको बताएंगे, तो वो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, उनको कैसे समझाऊं?
इसलिए ही आप अभी से खुद ही ज्यादा थोड़ा एक्टिव होके, अटेंटिव होकर के उसको, पति को थोड़ा एक्टिव और अलर्ट करने का प्रयास करो। क्योंकि वो बहुत ही डिपेंडेंट टाइप के नेचर के हैं, और कई बार फिर तुम खुद मालिक बन के डिसीजन लेके उनसे करवाओ।
खुद
उनसे राय पूछो और फाइनल बात आप करो, भाई आपका विचार क्या है आप बताओ, किसी से पूछने क्यों हम जाएंगे? हमारे जीवन की बातें हमें हल करनी है। हाँ, हमारी समझ में जब नहीं आएगी या कोई अति ऐसी बात होगी तो हमारे बड़े तो बैठे ही हैं, हम पूछेंगे उनसे। पर हर छोटी मोटी बात में हमें बड़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। कई बार व्यक्ति क्या सोचता है कि हमें माँ बाप को तो हर बात बतानी चाहिए ना, पर जो जरूरी है वो बताओ। छोटी छोटी बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो बताने से क्या है? तो इतना तो हमें बच्चे जैसा नहीं रहना है ना। जब आप एक गृहस्थी बने हैं, एक परिवार के रचयिता बने हैं और अब आप वयस्क हुए हैं, तो आपकी मैच्योरिटी की निशानी ही ये है कि आप बात को समझ सके, निर्णय ले सके और उसको पार कर सके। तो इसलिए रीता, आप मुझने की बात नहीं है और आने वाली परिस्थितियों के बारे में अभी से सोच के हमें चिंतित होने की बात नहीं है। आप अपने पति को समझ चुकी है, इसलिए अब आप खुद उसको हैंडल करो। आप पावरफुल बनो और आप उसको हैंडल करो। जो उनकी विशेषताएं हैं उसका लाभ लो, जो आपकी विशेषताएं हैं उससे आप मिलके अपने परिवार को चलाओ। तो बात हो जाएगी।
दीदी ये रीटा जो बोलते हैं, बिफोर मैरिज मेरे हस्बैंड मेरे को हर एक छोटी बात बताते थे, मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझसे प्यार करते हैं इसलिए मुझे सारी बात बताते हैं, तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है इनके साथ, कल को मैं इनके साथ शादी करके जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, डिसीजन भी अच्छे से लेते हैं। बट मुझे अब लगता है कि ये तो बच्चे जैसे नेचर के हैं, इनका नेचर बच्चा जैसे है, तो कल को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे बच्चों का क्या होगा? मीन्स कैसे ये डिसीजन ले पाएंगे उस टाइम पे?
देखिए, अब उनकी जो भी कमी पेशी है वो आपके सामने है, है ना? रीता बहन को हम ये कह रहे हैं कि अब आपके पति जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो अब आपके सामने स्पष्ट है। शादी से पहले सब बात बताते थे, आपको अच्छा लगता था, आप समझते थे कि ये बहुत लॉयल है, पर एक्चुअली वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते थे, इसलिए वो आपको सब बात बताते थे। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तो एक बच्चे जैसे हैं, कुछ भी वो न जवाबदारी उठा रहे हैं, न निर्णय कर पाते हैं। तो अब जबकि शादी आपकी हो ही चुकी है और पति में इस बात की कमी है, तो हमें ज्यादा इस बात को माइंड न करके हमें बार बार यही प्रयास करने हैं कि कैसे उसके अंदर इन गुणों का विकास हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले छोटे छोटे कामकाज की जिम्मेवारी उनको दो और उनसे ही निर्णय पाने का आग्रह रखो, और दूसरा कि कुछ कामकाज ऐसे हो जो आप खुद उनको साथ लेके करो कि भी बताओ क्या करना है, मेरा विचार ये है, आपका विचार क्या है, अच्छा फिर अब हम ये फाइनल करते। ऐसे उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर। बेशक आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मुझे ऐसे लग रहा है रीता बहन कि आप खुद इतनी एबल है कि खुद सेकंड में डिसीजन ले सकती है, पर अब पति को भी एक्टिवेट करना है तो थोड़ा आप उनको साथ लेकर के करो। तो इससे थोड़ा थोड़ा करते करते उसके अंदर ये गुण का विकास हो जाएगा। और तीसरा ये आप अप्लाई करो कि भाई आप बताओ अभी ही
जो भी है,
और आप नहीं बताते तो फिर मैं जो कहती हूँ ऐसे आप करो। तो इस प्रकार से थोड़ा ट्रीट करने से मैं समझती हूँ कि ये गुण भी उसमें आ जाएंगे। देखो, किसी में कोई विशेषता होती है, कोई कमी होती है। तो आपके पति में ये चीज है, उनको आप स्वीकार करो, ज्यादा माइंड नहीं करो, ज्यादा चिंता नहीं करो, आप अपना साथ दे करके उनको शक्तिशाली बनाओ।
तो तभी वो डिसीजन ले पाएंगे,
मतलब तब आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। बाकी बार बार ये बातें सोचते रहने से तो कोई गुण उसमें नहीं आ जाएंगे ना।
दीदी, ये रीता जो है ये पूछ रही हैं कि जब मैं डिसीजन लेती हूँ घर में किसी भी बात को लेके, और अगर वो डिसीजन गलत निकलता है तो ये लोगों के सामने जाके बोलते हैं ये डिसीजन मेरा नहीं था, ये डिसीजन इनका था, तो देखो ये गलत निकला, तो मैं क्या करूँ तब?
देखो, जब हम निर्णय लेते हैं तो उसके जो परिणाम आएंगे वो फेस करने के लिए तो हमें तैयार रहना ही चाहिए। तो ये बात तो आएगी, परंतु अगर वो बार बार ऐसा करते हैं और दूसरों के आगे मतलब आपकी बात निकालते हैं, तो आप भी कह सकते हैं ना कि जब वो खुद निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर क्या करें,
तो उनको लेना पड़ता
है, तो मुझे लेना पड़ता है। अब ये इतने पढ़े लिखे हैं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतने पढ़े लिखे इतने नॉलेजफुल व्यक्ति होते हुए भी ये खुद डिसीजन नहीं लेते। क्योंकि जब आप कोई बात का डिसीजन लेते हैं तो उसके जो परिणाम आते हैं उसके लिए हमें जवाबदार रहना पड़ता है, तो ये जवाबदार बनना नहीं चाहते। अब कोई कार्य करने का आपने निर्णय लिया तो फीडबैक हर एक का एक सरीखा तो नहीं आएगा ना, कोई अप्रिशिएट करेंगे तो कोई उसकी निंदा करेंगे। तो ये झेलने के लिए भी तो हमें तैयार रहना पड़ता है ना। तो ये दोनों बातों से बचना चाहते हैं तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इसलिए आप मुंझो नहीं, लोगों के आगे वो कहते हैं तो फिर आप भी कह सकते हैं ना कि भाई वो खुद ही निर्णय नहीं कर पाते हैं तो मैं क्या करूं, फिर मुझे मेरा जैसा अनुभव है उस अनुसार मैं निर्णय करती हूँ, कभी राइट होता है कभी गलत होता है। वो निर्णय मैंने लिया और गलत हुआ इसलिए कोई बातें थोड़ी करनी होती, कोई वो तो निर्णय ही नहीं लेते।
आपने तो फिर भी लिया।
और लिए हुए निर्णय हरेक के हमेशा सफल ही होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, कभी कोई निष्फल भी जाता है। इसलिए आप डरो नहीं और ये बातें माइंड नहीं करो। कई बार हम खुद बहुत कुछ एडजस्ट करते हैं, टॉलरेट करते हैं, लोग इन बातों को नहीं जानते हैं और हम बताते भी नहीं है लोगों को। और पति लोग फिर बताते हैं ऐसी बातें कि भई ये इनका निर्णय है, मेरा नहीं है, ये निष्फलता हुई उसका कारण यही है, तो उस समय फिर हम भी स्पष्ट करना छोड़े नहीं, हम भी स्पष्ट करें कि ये सिचुएशन होती है, वो निर्णय लेते नहीं है और मुझे निर्णय लेना पड़ता है। और एक बार, दो बार, तीन बार आप अपने पति को भी कह के देखिए कि देखो आप निर्णय नहीं लेते हैं और मैं लूंगी, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो भोगने के लिए भी तैयार रहना।
दीदी, जैसे मुझे लगता है रीता जी को अब अपने प्रश्न का आंसर मिला होगा कि उनके आपके हस्बैंड डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आपको ही उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, आप ही उनके साथ बैठें और उनको जैसा आप चाहते हैं उनको समझाएं, अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो उनको बोलें कि अब ये डिसीजन मैंने लिया है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही चलना पड़ेगा, तभी ही आप उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प उनकी कर सकते हैं। दीदी, एक ये मेरा ही क्वेश्चन है, मेरा ही प्रश्न है कि मैंने देखा है जहां पर मैं जॉब कर रही हूं अभी, मैंने देखा है वहां पर एक दूसरे के अंदर जेलसी की भावना बहुत होती है, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, नीचे गिराने के लिए ही रहते हैं कि ये वो आगे बढ़ रहा है तो इसको टांग खींचे और इसको नीचे गिराए। तो दीदी, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग?
तो आप जो कहती हैं वो सिर्फ आपके ही फील्ड में है ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में ये बात आती है कि कहीं भी व्यक्ति थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो उनके साथी लोग जो है वो उसके पांव खींचते हैं। तो हमारी जो ये कमजोरी है कि कोई थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो हम उसके पांव खींचते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, उसकी ईर्ष्या में हम उसका गलत कंप्लेन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं ताकि वो आगे न बढ़े। परंतु ये हमारी मानसिकता जो है और इस प्रकार का हमारा व्यवहार जो है वो सिद्ध करता है कि हमारे अपने अंदर अपनी शक्ति से आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए दूसरे जो आगे बढ़ते हैं उनको हम रोकते हैं। जिसके अंदर अपना कार्य करने की खुद की विशेषता है उसको तो कोई भय ही नहीं, उसको पता है कि मैं अपने क्वालिटी वर्क से ही मैं आगे बढ़ जाऊंगी, इसमें मुझे दूसरे को धक्का मारने की, गिराने की आवश्यकता नहीं। पर ये इतनी आज संकीर्ण मानसिकता है कई लोगों में हम देखते हैं कि वे दूसरों का खराब करके अपने को आगे रखना चाहते हैं। परंतु अल्टीमेट हमारी जो अक्षमता है, हमारी जो कमजोरी है वो आज नहीं कल उसके ध्यान में तो आ ही जाएगी। मान लो हमने दूसरे को गिरा के खुद आगे बढ़ गए पर हमारे में कैपेसिटी ही नहीं होगी तो अपने आप बड़ों को नजर में आ जाएगा कि इसके अंदर तो क्षमता ही नहीं। इसलिए अगर कोई ऐसे साथी ईर्ष्या करते हैं तो हमें इसको देख करके भारी नहीं होना चाहिए,
अवॉइड करना
चाहिए। और दूसरी बात कि सिर्फ अवॉइड भी ना करें परंतु हम उनका थोड़ा ध्यान रखें कि हम अपना कार्य करते हैं या कुछ अप्रिशिएशन मिलता है तो हम ज्यादा उनके आगे दिखावे नहीं, वर्णन ना करे, शो ना करे ताकि उनको जलसी हो। कितना भी अप्रिशिएशन मिले, चांस मिले तो भी हम सिंपल रहे, ज्यादा उसका वर्णन ना करे ताकि ईर्ष्या के पात्र हम ना बने। और दूसरा, हम उनको भी अप्रिशिएट करें कि देखो आप में ये विशेषता है, आप में ये विशेषता है, आप कितने अच्छे हैं, आपकी शुभ भावना से ही तो हम आगे बढ़े हैं करके थोड़ा हम उनको बड़ा कर दें ताकि वो हमारी ईर्ष्या न करे। सिर्फ अवॉइड करने से तो कई बार वो लोग बहुत खतरनाक काम करते हैं, पर हम अपनी सिद्धि और सफलता का ज्यादा शो न करें, और दूसरा हम उनकी विशेषताओं का वर्णन करके उनको जो है ये दिखाएं कि आप भी कितने विशेष हैं।
तो अगर कोई जेलसी करता है तो उनको मेन ये बात है कि हम उनको अपने एप्रिशिएशन का या जो हमें लेटर कंपनी की तरफ से या कहीं पर किसी को भी मिलता है तो उनको शो ऑफ ना करें, ताकि उससे उनको कम ज्यादा ईर्ष्या ना हो, वो इतनी ईर्ष्या और जेलसी ना करें।
हम खुशी में आके बताते हैं और फिर वो ऐसी बातें कर देते हैं कि वो हमारा कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब तक फाइनल वो चीज ना हो जाए तो हम खुद भी इतने फूल न जाए और धरती पर पांव अपने रखे और बात समा के रखे, ज्यादा हमें बताने की जरूरत।
कई बार ज्यादा प्रमोशन आ जाता तो हमारे अंदर भी ईगो आ जाता है, तो वो ईगो खत्म करना है, घमंड नहीं करना।
हम खुश हो जाते हैं जल्दी, तो फिर हम इससे वो ईर्ष्या करते, तो हमें दिखावा ही नहीं करना है।
धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया। दर्शकों, जैसे दीदी ने आज हमें बताया वो हम अपनी लाइफ में भी फॉलो करेंगे उसको, और सब परेशानियों का समाधान दीदी ने दिया, तो हमें भी ऐसा ही बनना है, ऐसा ही करना है आगे लाइफ में। तो दर्शकों, अब मुझे इजाजत दें, कल मैं आपको इसी समय फिर मिलूंगी। धन्यवाद।
ब्रह्मा कुमारी प्रदा